आज जो विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है हिंदी, और हम बात जो करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है नाखून क्यों बढ़ते हैं। जी हाँ, ये एक निबंध है जिसके बारे में आज हम अपने एक्सपर्ट के साथ विस्तृत जानकारी लेंगे। आपको बता दें, हमारे साथ इस विषय पर जानकारी देने के लिए बनी हुई है हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर मोनिका कादियान जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ।
जी धन्यवाद। शिक्षार्थियों और श्रोताओं, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज का इस कार्यक्रम में जो पाठ हमने चुना है वो है नाखून क्यों बढ़ते हैं। शिक्षार्थियों, जब हम ये शीर्षक सुनते हैं तो हमारे मन में एक उत्सुकता जागती है कि ये एक निबंध है, आपने सुना, इस विषय पर किस तरह का निबंध हो सकता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून अपने आप ही बढ़ जाते हैं, आप कितना काटते रहते हैं और फिर बढ़ जाते हैं। कई बार जैसे आप जिस उम्र में हैं, बहुत सारे लोगों को नाखून बढ़ाने का शौक़ होता है, वो नाखून बढ़ाते हैं और कई बार उनके माँ बाप, उनके घर के बड़े उन्हें गुस्सा करते हैं कि ये नाखून क्यों बढ़ा रखे हैं, कितने गंदे लग रहे हैं, काटो इनको। और आप अपना मन महसूस कर रह जाते हैं, आपको वो काटने पड़ते हैं, थोड़े दिनों में देखते हैं फिर से बढ़ जाते हैं। तो इस विषय पर ये निबंध किस तरह का होगा और हम इसमें क्या क्या जानेंगे? बहुत ही रोचक निबंध इस पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है शिक्षार्थियों, और जब हम इस पाठ पर चर्चा करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे साझा करेंगे, तो आप भली भांति इस बारे में अवगत हो पाएंगे कि नाखून किस तरह, नाखूनों का जो बढ़ना है वो क्या द्योतित करता है, क्या बताता है, क्या संकेत करता है, और किस तरह से हमारे जो मन की प्रवृत्तियां हैं, जो हमारी अपनी कह सकते हैं मानवीय प्रवृत्तियां हैं, लेकिन वास्तविक रूप में क्या वो विशेष रूप से मानवीय ही हैं, तो मानवों में तो हैं लेकिन मानवीय हैं या नहीं हैं, इस पाठ में हम जानेंगे। जैसे नाखूनों की बात की तो एक उदाहरण यहाँ पर भी दिया हुआ है कि आप कुछ समय तक अपने बाग बगीचे की अगर देखभाल नहीं करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे और खरपतवार उग जाते हैं, बहुत सारे दूसरे पौधे उग जाते हैं, घास उग जाती है, और जिन्हें आप अगर वहाँ पर होते तो आप उन्हें हटा देते क्यारियों में से, लेकिन वो अब वहाँ पर आ जाते हैं। आप फिर जब पहुँचते हैं अपने घर पर काफ़ी समय कहीं और व्यतीत करने के बाद, तो फिर आप अपने उस बगीचे की, उस बगिया की आप देखभाल करते हैं और फिर इस तरह की कोई भी अवांछित जो वस्तुएं होती हैं आप उन्हें हटा देते हैं। तो अगर हम ये कल्पना करें कि जो हमारा बाग है, जो हमारी बगिया है, और कोई जंगल जो आपने सुना हो या आपने देखा हो, उसमें क्या अंतर है, तो मुख्य रूप से हम यही मानते हैं कि देखभाल का अंतर है। आपने उन्हें बहुत देखभाल के साथ बड़ा किया है, आप वो प्राकृतिक रूप से वो पौधे वहाँ नहीं हैं आपके बाग में, लेकिन जंगल में हैं, और जंगल में कोई प्रकृति ही उनकी देखभाल कर रही है, कोई व्यक्ति उनकी देखभाल सिर्फ इसलिए इस रूप में कर सकता है कि उन्हें काटे ना, लेकिन पानी देना, उनकी कटाई छटाई की देखभाल तो नहीं करते ना हम। तो ये फर्क है बाग में, बगिया में और जंगल में। तो यहाँ पर इस उदाहरण के रूप में भी ये बात बताई जाती है कि हमारे मन में भी कुछ इस तरह के विचार आते रहते हैं जो नहीं आने चाहिए, लेकिन हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमारे मन में वो कुछ बातें इस तरह की आ जाती हैं, किसी के लिए हम कई बार बुरा सोच लेते हैं, कई बार किसी को नुकसान पहुंचाने का सोच लेते हैं, कहीं ना कहीं हमारी जो इंद्रियां वो हमें बताती हैं कि ये जो हम सोच रहे हैं ना, ये सही नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मन तो मन है, मन में इतने सारे विचार आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। तो यहाँ हम अपने बगिया को तो हमने बहुत अच्छे से काट छांट कर बहुत अच्छे से रख लिया, उसकी देखभाल कर ली, क्या हम अपने मन की भी देखभाल करते हैं इस तरह से? नहीं करते हैं तो कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखें? हमारे इतिहास में हमारी किस तरह की प्रवृत्तियां रही थी, किस तरह से हमने विकास की इस अवस्था को प्राप्त किया जो अब हम आज हैं। क्या ये अवस्था सही है, क्या इसमें कुछ सुधार किया जाना चाहिए, बहुत सारी बातों पर ये पाठ जो है ये आधारित है। तो इस पाठ के कुछ उद्देश्य हैं जिनके बारे में मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगी। जैसे कि इस कार्यक्रम के बाद आप मनुष्य द्वारा जो पशुता को दबाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका उल्लेख कर सकेंगे। हमारे जो पाशविकता है, जो पशु प्रवृत्ति है हमारे मन में, उसको दबाने के लिए हम कुछ कुछ प्रयास करते रहते हैं। हम संयम भी रखते हैं, हम अनुशासन भी रखते हैं, अगर नहीं रखते हैं तब भी हम ये जानते हैं कि ये जो दोनों मूल्य हैं ये बहुत ही अच्छे हैं और इन्हें हमें अपनाना चाहिए। तो इन गुणों का महत्व भी आप स्पष्ट कर सकेंगे और साथ में स्थिति के अनुसार सही और गलत का भेद क्या है। इस समय जो हम काम कर रहे हैं वो सही है, इस समय हम ये जो काम कर रहे हैं ये गलत है। तो ये जो भेद है, सही गलत का अर्थ हम समझ सकें और उसके अनुसार हम कार्य कर रहे हैं, इसका भी हम वर्णन कर सकेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो मानव सभ्यता जो है इसका इतने हजारों हजार साल से ये सभ्यता जो है विकसित हो रही है, तो इस संदर्भ में मानवीय प्रवृत्तियां किस तरह की रही इसका भी विश्लेषण कर सकेंगे। और कोई भी समस्या अगर है तो इसके अलग अलग पहलू हैं, उन पहलुओं पर हम विचार करके समाधान क्या हो, हमारे मन को संयमित करने का, अनुशासन में बांधने का किस तरह का कार्य हो कि ये मन जो है वो बहुत संयमित रहे। तो ये जो समस्या है हमारे सामने इसका हम समाधान खोज सकेंगे, इनका किस तरह से हम इसका समाधान खोजें इस बारे में भी हम उल्लेख कर सकेंगे। सफलता क्या है, सफलता बहुत बार इसका प्रयोग होता है कि सफलता वही है जो आपने अपने प्रयासों के आधार पर प्राप्त की है, किसी और के किए हुए कार्यों के आधार पर नहीं, मदद के आधार पर नहीं। और इस तरह से आपके जो प्रयास हैं वो कितने सफल हैं कितने असफल हैं आप, इसके बारे में बहुत बार बात होती है। बहुत बार ये भी है कि आप असफल हो गए हैं लेकिन आपके जो प्रयास हैं वो सार्थक रहे हैं। तो सफलता और सार्थकता में क्या अंतर है इसे भी आप स्पष्ट कर सकेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं शिक्षार्थियों, जिन्हें इस पाठ के अध्ययन के बाद हम आशा करते हैं कि हम प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए एक बार ये निबंध हम एक बार देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस निबंध में ऐसा क्या है कि हमने सबसे पहली बात की इसे पाठ्यक्रम में रखा है, दूसरी बात कि इसमें कुछ ऐसी जिज्ञासाएं इन्होंने इस पाठ ने हमें उत्पन्न की हैं कि हमें भी इस बारे में जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, उत्सुकता हुई है कि इस पाठ में आखिर है क्या। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस निबंध को लिखा है और इन्होंने बहुत ही रोचक ढंग से इस निबंध की शुरुआत की है और वे कहते हैं कि बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता, अब पिता जो है वो अल्पज्ञ नहीं है लेकिन ये नम्रता है उनकी, वो कह रहे हैं कि अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। बच्चे लगातार कुछ ना कुछ तो प्रश्न करते ही रहते हैं। आपको भी याद होगा कि बहुत ही अस्वाभाविक से लगने वाले, बहुत ही अजीब से लगने वाले प्रश्न बच्चे कर बैठते हैं। तो उनमें से एक प्रश्न यहाँ निबंधकार की बेटी ने भी उनसे किया और क्या पूछती हैं कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो पिता को उत्तर ही नहीं आया, क्या बताए वो बच्चे को कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब सोचा उन्होंने कि हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं। होता है जैसे हमने शुरू में बात की, सभी को अपने जीवन में कभी न कभी नाखून बढ़ाने के लिए डांट जरूर पड़ी होगी, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। अब देखिए, नाखूनों के लिए अभागे का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये नाखून बार बार काटे जाते रहते हैं। तो ये अभागे नाखून क्यों इस तरह बढ़ते हैं? काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, यानी वे कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो हमारा ही तो अंग है। तो ऐसा इस तरह से कहा गया जैसे कोई व्यक्ति है जो अपना दंड स्वीकार कर रहा है, कह रहे काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? यानी बार बार इनको काट रहे हैं, इनको समझ में क्यों नहीं आता है कि इन्हें नहीं बढ़ना है, ये फिर क्यों बढ़ जाते हैं? यही तो हमारा इस निबंध का शीर्षक है कि यहाँ ये नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इस तरह से निबंधकार ने हम में जिज्ञासा उत्पन्न कर दी है, जो ये विषय प्रवेश है, जो शुरू में जो उन्होंने जिस तरह से इस निबंध का आरंभ किया है, उससे हम में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है। अब निबंधकार जो हैं वो हमारे इतिहास की तरफ जाते हैं, मानव सभ्यता जब मानव सभ्य होने के क्रम में था तो किस तरह का था। हम सभी ने इतिहास पढ़ा है और हम लगातार बहुत सारी जानकारियां इस बारे में एकत्र भी करते रहते हैं। तो यहाँ निबंधकार वही बातें, कुछ बातें आप जानते हैं तो दोहराते हैं, लेकिन उनका इन बातों को यहाँ शामिल करने का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल अलग है और बिल्कुल नया है। तो ये नयापन क्या है उनकी इन बातों में जो हम पहले से जानते हैं? देखिए, वो कहते हैं कि कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा, उसे नाखून की जरूरत थी। क्यों जरूरत थी? उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे, असल में वही उसके अस्त्र थे, यानी वही उसके हथियार थे। दांत भी थे पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था, यानी दांत भी तो अस्त्र के रूप में प्रयोग किए जा सकते थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण थे नाखून। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था, जूझना पड़ता था जंगली जानवरों से भी जूझना पड़ता था, जो दूसरे मानव थे उनसे भी जूझना पड़ता था, जो साथ में और जो मानव होंगे उनमें से कोई ताकतवर भी रहा होगा, और वे आपस में किसी न किसी वजह से वे लड़ते रहते होंगे, भोजन के लिए सबसे पहले, आश्रय के लिए लड़ते रहते होंगे। तो उस समय नाखूनों की बहुत ज़्यादा उन्हें आवश्यकता होती थी, और ये तो इनके अपने अंग थे, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य जो था वो अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लग गया। बिल्कुल सही है, हमने इसमें क्या किया कि पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें काम में लाने लगा, यानी जो बड़े बड़े जो पत्थर थे उनसे वो चोट पहुंचाने लगा। उसे समझ में आ गया कि इनसे भी अस्त्र के रूप में अपनी बचाव के लिए, दूसरे पर हमला करने के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है, और इसी तरह से पेड़ों की डालियों का भी वो प्रयोग करने लगा। और इसी तरह मानव ने जो मृत जो पशु थे उनकी जो हड्डियां थी, चाहे वो उनका शिकार करता था या वे मृत प्राकृतिक रूप से थे, उनकी जो हड्डियां उसे मिली, उसने उन हड्डियों के भी हथियार बनाए थे। और इन हड्डियों के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक क्या था? देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। तो ये हमारी पौराणिक जो गाथा है उसका एक अंग है। उसके बाद की बात वो करते हैं कि मानव ने धातु के हथियार बनाए, जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे वे विजयी हुए। यानी जिनके पास जितने अच्छे हथियार थे, जितने मजबूत हथियार थे, वे उतने ही अधिक विजयी हुए। और ये जो हथियार थे, इसकी वजह से देवताओं के जो राजा होते थे वो तक मनुष्यों के राजा से सहायता लेते थे, क्योंकि मनुष्यों के राजा के पास ये लोहे के अस्त्र थे। और असुरों के पास अनेक विद्याएं तो थीं, वे अपना रूप बदल लेते थे, किस किस तरह से वे आक्रमण करते थे, लेकिन आक्रमण करने के लिए अस्त्र उनके पास नहीं थे। और यहाँ निबंधकार कहते हैं कि शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थी। आर्य विजयी हुए, फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। कहने का तात्पर्य क्या है शिक्षार्थियों, कि लोहे के जो अस्त्र थे उनके आगे इन सभी योनियों के जो योद्धा थे उनकी शारीरिक शक्ति या उनकी जो मायावी शक्तियां थी वे किसी भी काम नहीं आई। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। वे दूसरों को भी उसी तरह से चोट पहुंचा सकते थे और वे अपना बचाव भी जिस मानव के पास ये अस्त्र हों उनका बचाव भी कर सकते थे और दूसरे मानवों को, पशुओं को, प्रतिद्वंदियों को चोट पहुंचा सकते थे। तो यहाँ इन सब बातों का मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ बताया गया है कि किस तरह से ये जो नाखून हैं, नाखूनों को बढ़ाने के पीछे जो कारण रहा है वो दूसरों को चोट पहुंचाना रहा है। आत्मरक्षा तो रहा है, लेकिन आत्मरक्षा से कहीं अधिक अपनी ताकत को बढ़ाना रहा है और दूसरों को नुकसान पहुंचाना रहा है। और यहाँ पर इन अस्त्रों का प्रयोग जो था वो निरंतर विकसित होता गया। किस तरह से? पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक या वायु यानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है ये सबको मालूम है। शिक्षार्थियों, ये निबंध है और बिल्कुल सही बात है कि हम यहाँ पर इन्हीं सब पार्श्विक प्रवृत्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ कितनी सारी बातें लेखक बिना कहे भी कह रहा है। कैसे कह रहा है? वो कहता है कि इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, यानी हम कितने मैले हो गए हैं, हम कितने गिर गए हैं इन नाखूनों से, अस्त्रों से, लोहे के अस्त्रों से ही हमारा मन नहीं भरा। हमने इसमें बड़ा विकास किया, हमने बंदूकें रखी, कारतूस रखे, फिर तोप भी बनाई और बम भी बनाए और ऐसे वायुयान भी बनाए जो बमों की वर्षा करते थे। और इससे भी हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हम ये जो विकास है, विकास नहीं है, हमने इतिहास को कीचड़ भरे घाट तक घसीट लिया है। यानी हम कितने मैले हो गए हैं, हम कितने गंदे हो गए हैं, कितने बुरे हो गए हैं कि हम मानवों को हानि पहुंचाने के लिए अपना विकास चाहते हैं, अपना विकास कर रहे हैं। तो इस तरह शिक्षार्थियों, यहाँ द्विवेदी जी ने बताने का प्रयास किया है कि हम लोगों का इतिहास, अगर हथियारों की बात करें, अस्त्रों शस्त्रों की बात करें, तो हमें लज्जा भी आती है कि हमने ये जो विकास किया, क्या ये सचमुच विकास था? तो आगे कहते हैं ये कि नखधर मनुष्य एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून तो अब भी बढ़ रहे हैं। विकास तो उसने कर लिया है, लेकिन उसके जो नाखून हैं वो बढ़ना बंद थोड़ी ना हो गए, वो तो अभी भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। ये जो भीतर वाला अस्त्र यानी ये जो नाखून है जो अंग से लगातार निकलते रहते हैं, ये अब भी प्रकृति हमें प्रदान कर रही है। अब भी नाखून हमारे बढ़ रहे हैं, आज भी प्रकृति हमें याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम में जो ये पार्श्विक प्रवृत्ति आई है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। और क्या याद रखा जा रहा है तुम्हारे बारे में कि तुम वही लाखों वर्षों पहले के नख दंतावलंबी यानी नाखून और दांत पर निर्भर रहने वाले जीव पशु हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरने वाले चरने वाले, यानी तुम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। तुम कितना भी विकास कर लो, अब तुमने बहुत बड़े बड़े हथियार बना लिए हैं, एक ही बम से एक ही वार से तुम बहुत बड़े समुदाय को नष्ट कर सकते हो, लेकिन प्रकृति मानती है और जानती है कि तुम में किसी भी तरह की कोई ये प्रवृत्तियां जो हैं वो बदली नहीं है। तुम तो वही हो, वही पशु जो पहले अपने नाखूनों और अपने दांतों पर निर्भर करता था। ततः किम, तो क्या मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा। पहले तो नाखूनों के भरोसे थे तो आज नाखून रखने के लिए डांटता है, लेकिन पहले नाखून काटने के लिए डांटता होगा। लेकिन प्रकृति है कि वह अब भी नाखून को जिलाए जा रही है और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहा है। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे नहीं हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली हथियार मिल चुका है। यानी ये नाखून थोड़ी ना जानते हैं कि इनकी अब आवश्यकता नहीं है। ये नाखून नहीं जानते, उन्हें नहीं पता कि हमने तो बहुत बड़े बड़े हथियार बना लिए। तो यहाँ पर व्यंग्यात्मक रूप से लेखक कह रहा है कि इन नाखूनों को नहीं पता, पर हमें तो पता है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए तो उसे यह उसे असहाय है। यानी वो बर्बर नहीं है, अब वो सभ्य हो गया है। तो अगर बर्बरता का सूचक ये नाखून बार बार उगता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है, तो उसको वो बार बार काट देता है, क्योंकि वो इस सत्य को नकार रहा है कि वो मन से प्रवृत्ति से आज भी बर्बर ही है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी सुधार नहीं हुआ है, वो कोई भी कुछ भी बेहतर नहीं हुआ है उस, बल्कि वो और ज़्यादा मारक हो गया है और ज़्यादा हिंसक हो गया है। तो उसमें इस मानव में कहने को भी मानवता नहीं है। तो किस लिए इसे सभ्य कहा जाए, लेकिन हम तो अपने आप को सभ्य ही मानते हैं। तो इस तरह से लेखक यहाँ पर इतिहास के माध्यम से हमारा जो प्राचीन मानव का जो विकास का क्रम रहा उसके माध्यम से आज तक लाकर हमें छोड़ता है और बताता है कि हम कहाँ इस बात पर गर्व करते फिरते हैं कि हम सभ्य हो गए। हम सभ्य हुए ही नहीं। बीच में कुछ समय ऐसा आया जब लोगों ने नाखून बढ़ाना शुरू किया और इसका प्रयोग हथियार के रूप में नहीं किया, इसका इसे सज्जा के रूप में इसका प्रयोग किया गया। इसे संवारते थे और बहुत अलग अलग आकारों में रखते थे और अलग अलग आकृतियों में जब ये नाखून रखते थे तो एक तरह से आकर्षित करने के लिए नाखूनों की सज्जा की जाती थी और अपना मन बहलाने के लिए भी ये सज्जा की जाती रही होगी। और जो भी उस समय के सामान थे उनसे इस पर लाल रंग किया जाता था, इन्हें चिकना बनाया जाता था। तो इस तरह का भी जिक्र इस निबंध में किया गया है। कहने का तात्पर्य यह शिक्षार्थियों कि अलग अलग समय में नाखूनों का उपयोग अलग अलग था। एक बार उनका उपयोग अपना बचाव करने के लिए, शिकार करने के लिए, अन्य साथी मानवों से अपनी रक्षा करने के लिए, प्रतिद्वंद्विता के लिए किया जाता था, और कुछ समय के बाद इनका उपयोग संवारने की, खुद को संवारने के लिए, सुंदर लगने के लिए किया जाता था, कि बहुत सुंदर नाखून बना बना कर खुद ही उन पर मोहित हुआ जाता था। तो इस तरह से ये सभी बातें बताती हैं कि अलग अलग समय में नाखूनों के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण अपनाया गया था। इस तरह से यहाँ पर कहा गया है कि नाखून का बढ़ना एक है और केश का बढ़ना दूसरा है, और दांत का दोबारा उठना तीसरा है, और पलकों का गिरना चौथा है। तो और असल में सहजात प्रवृत्तियां जो हैं वो अनजान की स्मृतियों को ही कहते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ उदाहरणों के माध्यम से बताया है कि ये जो हमारे अंग हैं, इनकी जो ये प्रवृत्तियां हैं कि ये ऐसा ही होगा, नाखून बढ़ेंगे ही, केश भी बढ़ेंगे, और दांत एक बार गिरेंगे, जिन्हें हम कहते हैं कि दूध के दांत गिर गए, और फिर दूसरे दांत फिर से उगेंगे, और पलक जो हैं, हमारी पलकों के जो बाल हैं वो भी गिरते हैं। तो ये इस तरह से प्राकृतिक है, बहुत ये कुछ भी अलग ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ ये प्रश्न उठाया गया है कि ये सब तो चल रहा है, लगातार जा रहा है, कि कुछ पशुता के जो प्रमाण हैं वो हमारे बीच अभी भी हैं। तो हम किस ओर जा रहे हैं? क्या हम पशुता की तरफ जा रहे हैं, या हम मानवता की तरफ जा रहे हैं, मनुष्यता की तरफ जा रहे हैं? हम अस्त्र को बढ़ाने की ओर जा रहे हैं, या अस्त्र काटने की ओर जा रहे हैं? तो लेखक को कहीं ना कहीं इस बात का आभास होता है कि जो मेरी बेटी ने तो बहुत सहजता से ये प्रश्न कर लिया, लेकिन इस प्रश्न का जो कहना चाहिए कि उत्तरदाता है, वो सभी लोग हैं, संपूर्ण मनुष्य जाति है जो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए जवाबदेह है। तो वो कल्पना कर रहे हैं कि मानो वो बच्ची प्रश्न कर रही है कि जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये हमारी पशुता के अवशेष हैं, ये बता रहे हैं कि हम में अभी भी पशुता बची हुई है, और ये जो अस्त्र शस्त्र बढ़ रहे हैं यही तो हमारी पशुता की निशानी है। अब यहाँ पर एक बात और उदाहरण के माध्यम से वो प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि भारतीय संस्कृति जो है वो अनायास ही, बहुत ही सहजता से, कोई प्रयास, बिना कोई प्रयास किए ही, उसकी जो अपनी अंतर्निहित जो विशेषताएं हैं उनमें कुछ इस तरह की प्रवृत्तियां हैं जो हमें विशिष्ट बनाती हैं, जो हमें कहीं ना कहीं मानवता से पूर्ण बनाती हैं। कैसे बनाती हैं देखते हैं। वो कहते हैं कि भारतीय भाषाओं में प्राय ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता। यानी जब भी हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंस के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। हम देखिए हम कौन से शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आप भी याद कीजिए। वे कहते हैं कि 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देशी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। अब इंडिपेंडेंस का अर्थ क्या स्वाधीनता है? उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंस का अर्थ है अनधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, यानी किसी की भी अधीनता ना होना। पर स्वाधीनता का अर्थ तो अनधीनता का अभाव नहीं है। स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन होना, यानी संयमित होना, अनुशासित होना। तो यहाँ लेखक यही बताना चाहते हैं कि हमारी जो अपनी प्रवृत्तियाँ हैं, हम भारतीयों की जो संस्कृति है उसने हमें ये संयम सिखाया है। तो वो कहते हैं कि अंग्रेज़ी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेज़ी की अनुवर्तिता करने के बाद भी, उसके पीछे पीछे चलने के बाद भी, भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अनधीनता क्यों नहीं कह सका। उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा, यानी अपना बंधन। ये जो बंधन के बगैर तो कुछ भी नहीं है, शासन है तो भी अपना है और अधीनता है तो भी अपनी है, राज्य है तो भी अपना है। तो ये जो अपना बंधन है यही हमें विशिष्ट बनाता है। ये क्या संयोग की बात है या हमारी समूची परंपरा ही अनजान में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। मुझे प्राणी विज्ञानी की बात फिर याद आती है। सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हों ऐसी बात तो नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया है। हम कोई नौसिखियत नहीं हैं जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचाकर आरक्षित छोड़ दिए गए हैं। यानी हम बहुत पहले से सभ्य हैं, संस्कृत हैं। हमारी परंपरा कैसी रही है? महिमामयी रही है। उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्ज्वल हैं। हमारे अनजान में भी ये बातें हमें खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती हैं, अनुशासन की ओर प्रेरित करती हैं, संयम की ओर प्रेरित करती हैं और अहिंसा की तरफ प्रेरित करती हैं। हमारे ये ज़रूर है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली हैं। भारतीय चित्त जो आज भी अनधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का ही फल है। यानी हम यूं ही किसी के पीछे पीछे चलकर हम इस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। अनुकरण की प्रवृत्ति हम में इतनी अधिक हावी नहीं है, क्योंकि हमारा इतिहास, हमारी जो परंपरा है वो बहुत ही समृद्ध रही है और यही कारण है कि हमारे पास इंडिपेंडेंस के समकक्ष कोई भी इस तरह का शब्द नहीं है। हम उसके लिए स्वाधीनता का प्रयोग करते हैं और ये स्वाधीनता जो है इसका अर्थ होगा कि हम अपने अधीन हैं। ये जो स्व का, जो अपना संयम है, जो अपना आत्मानुशासन है, यही हमारी विशिष्टता है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, अपने आप पर, अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि ये बिल्कुल हमारी बहुत ही खास बात है, लेकिन वे ये भी कहते हैं कि हम सिर्फ इतिहास का अंधानुकरण करने के समर्थक ना बने। हम नए में जो भी वैज्ञानिक तत्व हैं, जो भी तार्किक बातें हैं, वो भी हम लें और हम अपने इतिहास से भी इसी तरह से तर्क के आधार पर हम निर्णय करें कि हम अंधविश्वास में न पढ़कर हम तर्क के आधार पर अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं को अपनाएं। तो इस तरह उन्होंने हमें ये संदेश दिया है। और आगे वो ये भी बताते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी जातियां आई हैं, उनमें आपस में युद्ध भी हुए हैं, झगड़े भी हुए हैं, और फिर वो बहुत प्रेम से और स्नेह से यहाँ पर बस भी गई हैं। तो यहाँ इस तरह से बसने वाली जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकाला था। किसने निकाला था? आप इसमें अपनी स्मृति पर जोर डालिए कि किसने सभी जातियों को एक ही स्तर पर लाकर उनके लिए एक धर्म का प्रवर्तन किया था। अभी हम इसी पर आगे बात कर रहे हैं। और इसमें महात्मा बुद्ध ने हमें सत्य और अहिंसा का जो उपदेश दिया वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी विरासत है, और उसी को लेकर आज विश्व के स्तर पर भारत अहिंसा का समर्थन करता है, और अहिंसा का जो संदेश है उसको हमारे देश के बहुत बड़े बड़े महानुभावों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे आगे बढ़ाया है और इसका समर्थन किया है। तो कहने का तात्पर्य ये है शिक्षार्थियों कि हमारे देश की परंपरा रही है आत्मबंधन की, स्व के बंधन की। और जब गौतम बुद्ध ये कहते हैं कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यही जो अपना बंधन है, खुद बनाया हुआ बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। और इस तरह से जब हम देखते हैं तो हम ये भी देखते हैं शिक्षार्थियों कि महात्मा गांधी का योगदान संपूर्ण विश्व के इतिहास में, विशेष रूप से भारत के इतिहास में कितना अधिक महत्वपूर्ण है, कितना अधिक आवश्यक है उनके द्वारा दिए गए संदेश पर का अनुकरण करना, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए जीवन व्यतीत करना। तो यहाँ पर सीधा सीधा महात्मा गांधी का जिक्र न करते हुए क्या कहा गया है कि एक बूढ़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, यानी अपने पर अंकुश लगाओ, दूसरों को देखकर कि वो ऐसा कर रहा है या ये ऐसा कर रहा है ये नहीं, अपने को बांधो, स्व आत्मानुशासन करो। तो आगे कहते हैं कि हिंसा को मन से दूर करो, उन्होंने कहा, मिथ्या को हटाओ यानी सत्य को अपनाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो। उन्होंने खुद भी तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपनी जानों की आहुति दे दी। तो यहाँ आराम की बात मत सोचो, वो लगातार काम करना चाहते थे, काम करते रहते थे, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो। तो इतनी सारी, इतनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने हमें बताई थी, और उन्होंने ये जो सारी बातें बताई उसका मुख्य जो उत्स था, जो मुख्य उनका बिंदु था, वो यही था कि हम खुद को बांध लें और हम इस पशुता से अपने आप को उबार लें। क्योंकि उनके द्वारा दी गई ये शिक्षाएं जो थी, बहुत लोगों को रास नहीं आई तो उन्हें गोली मार दी गई। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि सभी ने उनकी शिक्षाओं को नहीं अपनाया था, उनके मन में इस तरह के भाव, पशुता के भाव थे, तभी उनका जो वध था यहाँ ही इस भूमि पर किया गया, और कुछ लोगों को उनकी इन शिक्षाओं के प्रति संतुष्टि नहीं थी, उनका वो समर्थन नहीं करते थे, तो अपने विरोध के रूप में उन्होंने ऐसा जघन्य अपराध किया। तो यहाँ लेखक यही बात कह रहे हैं कि ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा, और प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य के जो भी अनावश्यक अंग हैं वो उसी तरह से झड़ जाएंगे जैसे उसकी पूंछ झड़ गई है, और उस दिन शायद मनुष्य की जो मनुष्य पशुता है वो भी लुप्त हो जाएगी, और शायद वो ये जितने भी हथियार बना रहा है औरों को मारने के, जो अस्त्र मारण अस्त्र बना रहा है, उनका भी प्रयोग वो बंद कर देगा। पर तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित कराना वांछनीय जान पड़ता है कि मनुष्यता का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है, और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। तो यहाँ पर जब इतनी सारी बातें हम करते हैं तो उसके केंद्र में ये बात रहती है कि ये नाखून इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हम में वो पशुता जो है वो अभी लुप्त नहीं हुई है, अभी भी हम में वो पशुता है, तो हमें नाखून काट के रखने चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें मनुष्य मानवीय भावों को बढ़ाना है, पाशविक भावों को नहीं, प्रवृत्तियों को नहीं। तो शिक्षार्थियों और श्रोताओं, हमने इस निबंध पर चर्चा की, और मैं समझती हूँ कि इस चर्चा में की गई बातों से आपको इसके बहुत सारे बिंदु अच्छे से समझ में भी आए होंगे, और इस पाठ को जब आप एक बार फिर से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आप इस पाठ को और अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। धन्यवाद।